ஓம் ஓம் ஓம். ஆதிகுரு சர்வஜ்ஞ பகவான் சங்கராச்சாரியஜி துவாரா விரச்சித் வேதாந்த டிண்டிமா இஸ் வேதாந்த கிரந்த கே ஆதார் பர் प्रातकालीन प्रवचन वेदांत विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए 41वां श्लोक। षण्निहत्यत्रयं हित्वा द्वयं वित्त्वा खिलात्यगम् एकं बुद्ध्वा स्नुते मोक्षम् इति वेदांत डिण्डिमः वित्त्वा षट्पञ्च वित्त्वाथ वित्त्वाथ चतुरस्त्रिकम् द्वयं हित्वा श्रयदेकम् इति वेदांत डिण्डिमः। देहो नाहम् अहम् देही देहसाक्षीति निश्चयात् जन्म मृत्यु प्रहीणोऽसौ इति वेदांत डिण्डिमः। प्राणो नाहम् अहम् देव प्राणसाक्षीति निश्चयात् सुत्पिपासोपशान्ति स्यात् इति वेदांत डिण्डिमः। मनो नाहम् अहम् देवा मनः साक्षीति निश्चयात् शोकमोहापहानि स्यात् इति वेदांत डिण्डिमः। बुद्धिर्नाहम् अहम् देवो बुद्धिसाक्षीति निश्चयात् कर्तृभाव निवृत्ति स्यात् इति वेदांत डिण्डिमः। नाज्ञानं स्याम् अहम् देवो अज्ञानसाक्षीति निश्चयात् सर्वानर्थनिवृत्ति स्यात् इति वेदांत डिण्डिमः। अहम् साक्षीति यो विद्यात् विविच्यैवम् पुनः पुनः स एव मुक्त्वासौ विद्वान् इति वेदांत डिण्डिमः। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। वेदांत विचार करने वालों के लिए सुंदर युक्ति भगवान शंकराचार्य जी प्रदान कर रहे हैं। सन्निहत्य त्रयम् हित्वा द्वयम् भित्वा अखिलातिगम् वेदांती संसार को बचाने वाला नहीं है, संसार नष्ट होने लग जाए तो इसको नाश करने में और ज्यादा उत्साहपूर्वक लगता है वेदांती। ये वेदांती का विशेष है। संसारी संसार को बचाने के लिए मरीमेट करता है कि कैसे इसको बचाया जाए, कैसे इसकी रक्षा की जाए, और वेदांती कैसे इसको नाश किया जाए। बड़ा विपरीत है। संसारी और वेदांतियों में यही अंतर है, यही भेद है। परिणाम क्या होता है? जो स्वाभाविक रूप में नष्ट होने के लिए प्रवृत्त हुआ है, यानी नष्ट होना नाश होना ही जिसका स्वभाव है, उसको बचाने के लिए मरी मिट्टी लगता है और बचा नहीं सकता है तो नष्ट होने का दुख तो उसको ऊपर से आएगा। साथ ही बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है वो संघर्ष का दुख भी उसके साथ जुड़ जाता है। इसलिए इस संसार में संसारी सबसे ज्यादा दुखी होता है। सबसे ज्यादा दुखी का अभिप्राय केवल दुखी नहीं होता है, सबसे ज्यादा दुखी होता है। सबसे ज्यादा दुखी होने में कारण यही है कि नाशवान पदार्थ को बचाने के लिए संघर्ष करता है। परिणाम नष्ट होना पदार्थ का स्वभाव है, वो नष्ट होंगे ही होंगे। तो पदार्थ नष्ट होने का दुख हो गया और दूसरा संघर्ष करते हुए भी नष्ट हो गया तो संघर्ष करने का दुख भी और बढ़ गया। अब संसार ऐसे ही चल रहा है और चलाना पड़ रहा है, वो है ना, तो आप ही जवाब देते हो हमको, ऐसा क्यों करते हो? तो बोले महाराज ऐसा करना पड़ता है तो तुमको बाध्य कौन कर रहा है? बोले महाराज व्यवहार में ये समाज में ये सब करना पड़ता है, न करो तो लोग निंदा करते हैं, गाली देते हैं, आलोचना करते हैं, इसलिए करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अब इसको समाज ने एक बड़ा विलक्षण नाम दे दिया है, नैतिकता का नाम दे दिया समाज ने, है? नैतिकता का नाम दे दिया है, आदर्श का नाम दे दिया है। तो बाप मरने को तैयार है, मां मरने को तैयार है, वृद्ध हो गई है, ये भी जानते हैं, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कहीं भी किसी भी प्रयत्न से किसी ने अपने मां और बाप को बचाए नहीं रखा है, समझे कि नहीं। और यदि कोई मां बाप बचे हुए हैं वो किसी के प्रयत्न से नहीं बचे हैं, वो अपने प्रारब्ध से बचे हैं। तो बच्चों को क्या लगता है, हमने प्रयत्न किया इसलिए बच गए, बच्चों को क्या लगता है बोलो, समाज को क्या लगता है, बच्चों की बात छोड़ दो, समाज को क्या लगता है, हमने प्रयत्न किया नेपाल में अपना पोखरा में आश्रम है और काठमांडू में भी है, देवघाट में है, तीन चार आश्रम है। तो एक काठमांडू के भक्त को कहा, काठमांडू में ज्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो शहर है, धुआं धूल इसका पॉल्यूशन है। अब का पोखरा में पॉल्यूशन जीरो पॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि जंगल के बीच में है, पहाड़ के चोटी पर है, चारों तरफ हिमालय का दृश्य है, अब वहां पॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं है। तो हमने कहा तुम पोखरा चलो, पोखरा के आश्रम में रहो, ठीक हो जाएगा, यहां पॉल्यूशन है इसलिए तकलीफ हो रहा है। तो उसका बेटा कहता है कि नहीं महाराज, पोखरा तो जंगल में है, पहाड़ की चोटी पर है आपका आश्रम, काठमांडू में ही ठीक है। क्यों ठीक है महाराज, तुम ही तो कह रहे हो यहां पॉल्यूशन ज्यादा है। तो वो जवाब देता है, महाराज यहां ठीक इसलिए है कि कहीं कुछ हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल ले जा सके। देव जी, उसने क्या तर्क दिया, कहीं कुछ हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, चारों तरफ हॉस्पिटल हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, गाड़ी है, सब साधन है। अब पोखरा में वहां आश्रम में कहीं कुछ हो गया तो हॉस्पिटल पहुंचाने ही दो घंटे लगे, तुरंत पहुंचा नहीं सकते महाराज। हमने कहा तुम ये बताओ, काठमांडू में इतना सुविधा है कि तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं काठमांडू वासी, तो काठमांडू में कोई नहीं मरता, बोलो तुम जो कह रहे हो ना, तुरंत पहुंचा सकते हैं तो कोई नहीं मरता है। कितना उदाहरण है कि उसको थोड़ा सा तकलीफ हो गया, तुरंत गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा खत्म हो गया, अब क्या कर लोगे भाई। अब कुछ लोगों को भ्रांति ये होती है कि नहीं नहीं हमने तुरंत ठीक समय में हॉस्पिटल पहुंचा दिया इसलिए बच गए, ये उनकी भ्रांति है। वास्तव में वह तुरंत मर गया या बच गया ये उसकी प्रारब्ध पर निर्भर करता है, लेकिन औरों को भ्रांति होती है कि हमने बचाया, और बचा नहीं सकते हैं तो पश्चाताप होता है कि ग्लानी होती है कि देखो बचा नहीं सके, तो ये नैतिकता सामने आ जाती है ना। अब यदि वेदांति की दृष्टि से ही बात करें, उस वेदांति नैतिकता को मानता नहीं, जाने तुम नैतिकता तो तुम्हारी व्यवहार की बात है, नैतिकता व्यावहारिक सत्ता का विषय है, पारमार्थिक सत्ता का विषय तो है ही नहीं ना, हम स्पष्ट करना चाहते हैं। नैतिकता व्यावहारिक सत्ता का विषय है और पारमार्थिक सत्ता का विषय है तो नैतिकता नहीं है, अनैतिक भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है, वो तो कल्पना है सब। नैतिक अनैतिक परमार्थ में केवल काल्पनिक है और व्यावहारिक सत्ता है उसकी। लेकिन व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता के बीच में ऐसा संघर्ष है कि व्यावहारिक सत्ता ज्यादा हावी हो गया और हावी ऐसा हो गया कि पारमार्थिक सत्ता बिल्कुल विस्मृत हो गया, बिल्कुल उपेक्षित हो गया और सब कुछ व्यावहारिक सत्ता में ही टिका हुआ है। तो कहते हैं मरना ही है, मरना है, ये बिल्कुल निश्चित है। एक तो जीर्ण हुआ है, वृद्ध हुआ है, प्राकृतिक दृष्टि से भी शारीरिक दृष्टि से भी वो तैयारी कर रहा है। अब हम नैतिकता को आगे करके उसको बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, यूं करते हैं, त्यों करते हैं, लाखों खर्चा करते हैं, इन सब के बावजूद भी अंत में वह मरता है। तो क्या कहता है अंत में, हमने भरसक कोशिश की, अंत में यही कहेगा ना वो, हमने भरसक कोशिश की, बहुत कोशिश किया, डॉक्टर को दिखाया, ऑपरेशन किया, यूं किया, त्यों किया, दवाई की, ये सेवा वो सेवा, तब बचा नहीं सके, तब क्या करें। तो उसको अंदर ही अंदर बाप को बचाने के लिए किया गया कोशिश के अंतर्गत पैसा भी बहुत कुछ खर्च हो गया, उसका दुख भी है अंदर, लेकिन बाहर क्या कह रहा है, हमने बचाने के लिए भरसक कोशिश की। क्यों किया, तुम भी जानते हो कि ये बचेगा नहीं, तो क्यों खर्चा किया। बोले महाराज लोग क्या कहेंगे, नैतिक तो सामने आ गया कि नहीं, लोग क्या कहेंगे इसके चलते वो दुख को और प्लस कर रहा है। संसार इसी तरह चल रहा है भाई। तो वेदांती तो बड़े निष्ठुर होते हैं भैया, कहते वो तो मर रहा है तो मरने दो ना, वो क्यों, तुम क्यों परेशान होते हो। यहां तो कहते हैं दूसरों को बचाने की तो बात छोड़ दो, अपने को भी बचाने की कोशिश मत करो। ये श्लोक देख लो अभी है, अपने भी बचाने की कोशिश मत करो। बचाना होगा प्रारब्ध बचाएगा, नहीं बचाना होगा तो नहीं बचाएगा, तुम क्यों परेशान होते हो। शंकराचार्य जी तो सीधे कह देते प्रारब्धाय समर्पितम सो बपुहु, तुम इतना ही करो कि अपना शरीर को प्रारब्ध के हवाले कर दो, समर्पितम हा प्रारब्धाय समर्पितम, बचाए बचाए निकाले निकाले। अब इसकी आवश्यकता किसको है भैया, जरा जीर्ण हो चुका शरीर की आवश्यकता अब है किसको। लेकिन नैतिकता के नाम में बेटा कहता है कि नहीं नहीं हमें जरूरत है, तुम्हें जरूरत है। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर है, ये दो श्लोक हैं। शंकराचार्य कहते हैं सन्निहत्य त्रयम् हित्वा द्वयम् भित्वा अखिलातिगम् एकम् बुद्ध्वा स्नुते मोक्षम् इति वेदांत डिंडिमः। घर में तुम्हारा कोई कार्यक्रम हो, बढ़िया रस पूरी पकाओ, हलवा बनाओ, श्रीखंड बनाओ, वासुदी बनाओ, तो सब मिलकर खाओ, यही है ना एंजॉय, यही है ना आनंद, है ना। तो आप लोग करते ही हो, पार्टी देना है, हम लोग करते ही हैं, भंडारा देना है, है। आप शादी के चक्कर में, बहू बेटे के शादी के चक्कर में, बेटा बेटी के शादी के चक्कर में रहते हो, हम लोग गादी के चक्कर में रहते हैं। गादी माने गद्दी। शादी और गादी ये दोनों मुसीबत के जड़ है, और हम जो गादी के चक्कर में रहते हैं, फलाने मटके महंत हैं, फलाने मटके मंडलेश्वर हैं, फलाने अखाड़े के मंडलेश्वर हैं। क्या करना पड़ता है महाराज मंडलेश्वर बनने में? अरे अखाड़े में साधु संतों को भंडारा देना पड़ता है। कितना खर्च होता है महाराज? एक भंडारे में कम से कम 15 लाख रुपया। बोलो बोलो, अब हो गया ना गादी? तुम्हारी शादी और हमारी गादी में अंतर क्या हुआ? शादी में भी पैसा खर्च करो, इधर गादी में भी है? गादी लेना है, शादी करना है ना? तो करना लेना एक ही चीज तो है, गादी करना है कह दो ना, और क्या है? अभी तक गादी न होने से कुंवारे हैं, और गादी करना है, बोलो और क्या? महंत बनना है ना, मठाधीश बनना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? वो भंडारा करो, अखाड़े में पुकार करानी है, साधुओं को भंडारा कराना है, दक्षिणा देनी है। वाह क्या कहना, बेटे की बहू की बेटी की शादी में जितना खर्च करो दुनिया क्या कहेंगे? वाह वाह, उसने अपनी बेटी की शादी में इतना खर्च किया है, वाह वाह। तो हमारे यहां भी मंडलेश्वर बनते समय क्या किया उसने? बोले इतना खर्च किया, सबको 500 का दक्षिणा दिया है, 10-10 रुपया दो तो फेंके गाली कर दे के जाएंगे, 500 रुपया दिया, वाह भोजन क्या बढ़िया बनाया, कपड़ा भी दिया, 500 दक्षिणा भी दिया, वाह वाह। कल नवारा टाइम्स में कहीं आया था किसी ने अपनी बेटी की शादी में, हाँ, चांदी के थाल कटोरी गिलास सब, क्या कहना है? एक एक बारातियों को एक एक सेट चांदी का बर्तन दिया उसने, और क्या क्या पेपर में आ गया जी, वाह वाह वाह। अब यहां तो क्या है भैया, सन्निहत्य, हाँ, मोक्ष सुख का अनुभव करना है तो सबका नाश करो, तभी जाकर तुम मोक्ष का सुख का अनुभव। मोक्ष कोई भोज या भंडारा या पार्टी नहीं है कि सब मिलकर भोगें, समझ रहे कि नहीं? मोक्ष का जो आनंद है, मोक्ष का जो सुख है, वह सबको इनविटेशन भेजकर, निमंत्रण भेजकर, आओ हमने मोक्ष प्राप्त कर ली है, सब मिलकर भोगें है। भोले साहब को खत्म करो और अकेले भोगो मोक्ष सुख। मोक्ष सुख बांटने की चीज ही नहीं है। देख लो ये श्लोक कितना सुंदर है। सन्निहत्य, सबसे पहले तो छेओं का हत्या करो, तभी जाकर तुम मुक्त हो पाओगे है। क्या है महाराज वो छे जिसकी हत्या करने की बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं? षड़ूर्मी, ऊर्मी छे है ना, तो उन छों का हत्या करो, सन्निहत्य, यही तुम्हारे लिए मोक्ष के प्रतिबंधक हैं, दुश्मन हैं, इनकी हत्या करो पहले। छे ऊर्मी क्या क्या है? जन्म मृत्यु, भूख प्यास, शोक मोह, यही छह ऊर्मी है। जन्म मृत्यु भूख प्यास शोक और मोह, सबसे पहले इनकी तो हत्या करो, इनका नाश करो। आगे आगे के श्लोकों में इनके उपाय भी बता रहे हैं, इसका फल भी बता रहे हैं। तो पहले तो इस षड उर्मियों को जीतो, नाश करो माने जीतो। ये मेरे स्वरूप में कल्पना मात्र है, बस अपने से अलग करो। हाँ, छह को निहत्य नाश करने के बाद त्रयम हित्वा, फिर तीन की भी हित्ता हत्या करो भाई। वो तीन की हत्या क्या है महाराज? तीन शरीर ही तीन है, वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीन शरीर में अहमता ही तुम्हें मोक्ष आनंद का भोग में अनुभव करने में प्रतिबंधक हैं, दुश्मन हैं, ये रुकावट हैं। इनकी भी हत्या करो, नाश करो, बात करो। वेदांत क्या कहता है? नाश करो अर्थात हत्या करो, नाश करो अर्थात बात करो। बात का अर्थ है जहां ये है ऐसा प्रतीत हो रहा है वहीं ये नहीं है निश्चय करना, इसका नाम बाद है। क्योंकि प्रातिभाषिक वस्तु का नाश तो संभव ही नहीं है, प्रातिभाषिक वस्तु का, विवर्तित वस्तु का नाश करना तो संभव ही नहीं है। तो क्या करना है? तो वेदांती वाद करना है बोलते हैं, और क्या। सो अधिष्ठान है वाद मानत्व मिथ्यत्व, मिथ्या निश्चय करना ही बाद है। जिस अधिष्ठान में जो दिख रहा है उस अधिष्ठान में वह मिथ्या है, यह निश्चय करना बाद है। जैसे विचार न करने वाला व्यक्ति तात्कालिक देखते समय में मरुभूमि में बड़ा भारी पानी का सरोवर देखेगा, और कहां देख रहा है वो पानी के सरोवर को? मरुभूमि में। अब पानी लेने के लिए वह लोटा लेकर जा रहा है, घड़ा लेकर जा रहा है, तो उधर से ही आने वाला एक व्यक्ति उससे कहता है कि तुम कहां जा रहे हो भैया घड़ा लेकर? बोले वहां पानी है, मुझे पानी चाहिए, इसलिए पानी लेने जा रहा हूं। तुमने कैसे कह दिया कि वहां पानी है? उसने कहा कि दिखाई पड़ रहा है, देख लो। बोले मैं वहीं से आ रहा हूं, वहां पानी नहीं है। फिर दिखाई पड़ रहा है, पानी नहीं है तो कैसे दिख रहा है? बोले इस घाम सूर्य के किरण और बालू के संयोग से जो चमक निकला, उस चमक के चलते पानी जैसे प्रतीत होने लगा है, जो भ्रांति से तुम्हें पानी प्रतीत हो, वहां पानी है नहीं, मैं वहीं से आ रहा हूं। उसको विश्वास नहीं हो रहा है, अब मेरी बात पर तुमको विश्वास नहीं है तो जाओ गाड़ा लेकर वहां पहुंचा तो पानी कहीं कुछ नहीं है। अब वो आ गया फिर वापस, पानी मिला नहीं इसलिए लौट कर आ गए, फिर खड़े होकर देखता है तो वहीं पानी दिखती है जहां थे भाई। तो अब की बार वो क्या कहेगा बोलो? देखने से रोक तो सकता नहीं वो है, पानी दिखाई पड़ने से रोक तो सकता नहीं है ना। वहां खड़े होकर, दूर खड़े होकर जब भी देखेगा पानी तो दिखेगी, लेकिन अब वहां पानी नहीं है। ठीक गुरु ने जो कहा, महात्मा ने कहा, या पहले वाले व्यक्ति ने जो कहा, सूर्य के किरण और बालू के चमक दोनों के संयोग से भ्रांति से पानी दिख रहा है तब, लेकिन पानी नहीं है। अब दूसरी बार पानी दिखने पर भी उसका निश्चय क्या हुआ? पानी वहां नहीं है। इसको वो पानी का नाश करना यानी बाध करना, पानी का बात कर दिया, पानी वहां नहीं है बस। वेदांती जगत का बात करने की बात करता है, नाश करने का मतलब ये नहीं कि पूरे पृथ्वी को हिला दो और जगत का नाश हो जाए भूकंप की तरह, ऐसा नहीं है।
पृथ्वी यदि है दिख रही है तो किस अधिष्ठान में दिख रही है, उस अधिष्ठान में वास्तव में पृथ्वी है कि नहीं, जगत है कि नहीं। तो जैसे पानी का दृष्टांत है, विचार करने पर पानी वहां नहीं है, निश्चय ही जगत का वाद, यही जगत का नाश है। तो भूख प्यासे सड़ उर्मी, छे छे उर्मियां कहां हैं? जन्म मृत्यु शरीर में है, मुझ में नहीं। भूख प्यास प्राण में है, मुझ में नहीं। शोक मोह मन में है, मुझ में नहीं। मुझे ये मुझ में ये छह उर्मी है ही नहीं, यही निहत्या है। ये छह उर्मियों का हत्या है, ये छह उर्मियों का नाश है, ये छह उर्मियों का वाद है। त्रयम हित्वा, तीन शरीरों का नाश करो, है बात करो। मुझ में न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है। हित्वा द्वयम भीत्वा, अब रहा दो, उनको विनाश करो भाई। हा तो दो की प्रतीति किससे होती है? कर्ता और भोक्ता। कर्ता भाव, मैं करता हूं, और भोक्ता भाव, मैं इसका भोक्ता हूं। क्योंकि सारे प्रवृत्ति का मूल ही ये कर्ता और भोक्ता भाव के चलते हैं। मैं करूंगा इसीलिए मुझे मिलेगा, ये कर्ता भाव भोक्ता भाव बुद्धि का धर्म है। आगे बताएंगे इसका फिर स्पष्ट करके। ये दोनों का भी निहत्या भित्वा अखिलातिगम, सभी से अलग होकर अकेले चलो। अखिला अति गम, सभी का बात करके तुम अकेले चलो। फिर सही क्या है तो महाराज बोले एकम बुद्ध्वा। एकम माने अधिष्ठान मात्रम, प्रकाश मात्रम। एकम बुद्ध्वा, मैं अकेला हूं, मेरे स्वरूप में मैं अकेला हूं। मेरे स्वरूप में सड़ रिपु भी नहीं है, माने सड़ उर्मी भी नहीं है। मेरे शरीर स्वरूप में ये तीन शरीर भी नहीं है। मेरे स्वरूप में कर्ता भोक्ता भाव भी नहीं है। मेरे शरीर में कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूं। एकम बुद्ध्वा, निर्धर्मक स्वयं को निश्चय करके मोक्षम अस्मुते, अकेला मोक्ष सुख का अनुभव करो। अस्मुते माने भोगना, अनुभव करना है। ये सभी साधु को बुलाकर भंडारा करके भोगने की चीज नहीं है मोक्ष। निमंत्रण कार्ड देकर सबको बुला बुला कर होटल में आओ, वहां पार्टी दे रहा हूं, मेरा बर्थडे है, केक काटेंगे, केक खाएंगे, तुम्हारा बर्थडे ही नहीं है तो तुम कहीं को केक काटोगे? तुम्हारा बर्थडे ही नहीं है तो दूसरे के जन्मदिन मनाकर तुम खाओ केक? दूसरा कौन है? शरीर। जन्म शरीर का हुआ है, शरीर तो तुमसे अलग है, इसलिए दूसरा है। दूसरे के जन्म हुआ है और दूसरे के जन्मदिन मनाकर तुम केक का पार्टी खाओ? भोगो, सब मिलकर भोगो, ये संसार का विषय है, मिलकर भोगने की चीज है, भोगो। लेकिन मोक्ष सुख अकेले भोगने की चीज है, क्योंकि मोक्ष में सबका बात करने के बाद किस कोई दूसरा बचे तब न भोगोगे। सबका बात किए बिना मोक्ष सुख नहीं मिलने वाला, समझे कि नहीं? सबका बाद किए बिना मोक्ष सुख मिलेगा नहीं, और सबका जब वाद कर चुके हो तो फिर और किसको बांटोगे? तो अकेले भोगना है कि नहीं, यही बात शंकराचार्य जी कहते हैं। सन्निहत्य त्रयम हित्वा,
द्वयम् भित्वा किलातिगम् एकम् बुद्ध्वा स्मृते मोक्षम्।
अब ये त्रयम् हित्वा की जगह हमने तीन शरीर की व्याख्या की है, तो त्रयम् शब्द का अर्थ एषणा त्रय भी ले सकते हो, तीन प्रकार की एषणा, इनका भी तुमको नाश करना पड़ेगा, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। ये त्रयम् हित्वा के जगह एषणा त्रय भी ले लेना, त्रयम् हित्वा के जगह तीन शरीरों को भी ले लेना। इसी बात को फिर दूसरे श्लोक से भी कह रहे हैं, भित्वा षट पंच भित्वाथ भित्वाथ चतुरस्त्रिकम् द्वयम् हित्वा, छह को नाश करो, पांच को नाश करो, चार को, छह को नाश करोगे तो पांच बचेंगे है ना, पांच को भी नाश करो तो चार बचेंगे, चार को भी नाश करोगे तो तीन बचेंगे, तीन को नाश करोगे तो फिर दो बचेंगे। बोले दो को भी नाश करो, अकेले ब्रह्म सुख का भोग करो है, यहां नहीं चलेगा तुम्हारा फॉर्मूला, हम दो हमारे दो, कहां कहां वेदांत में नहीं चलेगा, हम दो हमारे दो फॉर्मूला ये वेदांत में नहीं चलने वाला है भाई, हम एक हमारे एक है? फिर भी कहीं दो खड़ा ना हो जाए, हम एक और हमारे एक, हम एक बस इतना ही चलेगा, हमारे तो शब्द ही नहीं प्रयोग करना, हम एक हैं। षड भित्वा षट, पहले क्या बताया था षड उर्मी, अब यहां षड रिपु ले लेना, षड रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये तुम्हारे छह शत्रु हैं, ये जन्म से तुम्हारे शत्रु हैं, ये बाद में किसी ने लगाकर शत्रु हुए हैं ऐसा नहीं है, इनको किसी ने भड़का दिया इसलिए तुमसे शत्रुता कर रहे हो ऐसा नहीं है, ये तो जन्म से ही तुम्हारे शत्रु हैं, कभी भी ये तुम्हारे हित चिंतन नहीं करेंगे, तुम्हारे में ही रहेंगे, समझे कि नहीं, तुम्हारे आश्रय में रहेंगे और तुम्हारे ही शत्रु बनकर रहेंगे, जन्मजात शत्रु हैं, दूसरे बार जन्मोगे तो भी ये शत्रु फिर तुम्हारे साथ ही पैदा होंगे, ऐसा नहीं समझना कि मर जाने के बाद ये शत्रुता खत्म हो जाती है। हाँ, सामान्य जो व्यवहार में शत्रुता है वो तो मरणांता ही शत्रुता, समझे कि नहीं, जीवन जब तक है तब तक शत्रु है, मृत्यु के बाद वो शत्रुता खत्म हो जाती है, लेकिन ये शत्रु ऐसे हैं कि मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहते हैं और जब तुम पैदा होगे तो ये तुम्हारे साथ ही पैदा होते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हारे हित की कभी भी बात करेंगे ही नहीं। बस तब इनका तो तुम कभी भी महत्व नहीं देना, इनका तो नाश करो करो हर हालत में, भित्वा षट है ना, षट रिपु काम क्रोध लोह मोह मद मात्सर्य, अत पंच भित्वा पंच भित्वा, अब बचे पांच, उनका भी नाश करो भाई, कि पांच क्या बचे हैं तो पंचकोश, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, एक कोष ही तुमको बंधन व्यापक को परिच्छिन्न करके रखता है, इनका भी तुम भित्वा नाश करो, पंचकोश भित्वा था चतुहु, चार का भी नाश कर डालो, बचेंगे चार, उनका भी नाश करो, तो चार क्या बचेंगे महाराज, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि, समाधि को अच्छा नहीं मानना, समाधि एक ऐसी चीज है, समझे कि नहीं, समाधि तुम्हारा शत्रु तुमको मारने के लिए आया है तब तुम कहीं छुप जाओ, समझे कि नहीं। तुमने देख लिया कि शत्रु मुझे मारने आया है तो तुम कहीं जाकर छुप जाओ। तुम्हारा छुपना शत्रु का नाश नहीं है, समझे कि नहीं। बोलो, क्या तुम छुप गए इसका मतलब शत्रु मर गया? दुश्मन मर जाएगा तुम्हारे छुपने से? दुश्मन तो जिंदा है, तुम्हारे छुपने मात्र से दुश्मन मरेगा नहीं। और उस इस प्रतीक्षा में बैठा हुआ है तुम्हारा दुश्मन कि आज नहीं तो कल कभी न कभी निकल के आएगा, तब हम छोड़ेंगे नहीं, समझे कि नहीं। तब ये जो समाधि में जाकर छुपने की बात कल्पना तुम कह रहे हो ना, उसको भी नाश करो, वो भी तुम्हारे हित की चीज नहीं है। कितने लोग प्रारब्ध से बचने के लिए समाधि में जाकर छुपे और हजारों वर्ष समाधि में रहने पर भी प्रारब्ध नाश हुआ नहीं, समाधि से जगे कि प्रारब्ध ने उसका आक्रमण कर लिया। तो समाधि छुपने की जगह है, छुपना समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए चारों का वित्वा नाश करो, समाधि की भी तुम कल्पना मत करो। और पतंजलि ने तो समाधि सुख में भी आसक्ति हुई कि तुम्हारे लिए वही बंधन बन जाएगा। तुम तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय तुरीयातीत चौथी अवस्था से भी तुम आगे निकलना है, समाधि से भी आगे निकलना है। भित्वा था त्रिकम, अब बचे तीन, उनका भी नाश करो। क्या है तीन? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये त्रिगुणात्मिक माया अविद्या, ये तीनों गुणों का नाश करो। अब रहे दो, तो यहां तो कहते हैं दो को भी नाश करो, दो भी न रहे। क्या है? भागवत में सुना है ना तुमने, एक बहू घर में चक्की चलाकर आटा बना रही थी, गेहूं पीसकर आटा बना रही थी। अभी अभी शादी किया था, हाथ भर चूड़ियां थी, है? अब जब वो चक्की चलाने लगी तो आवाज आ गए, तो उसने सोचा ये आवाज के चलते मेरे साथ ससुर पति आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उनके नींद में व्यवधान हो जाएगा। तो धीरे धीरे वह चूड़ियों को निकालना शुरू की। दत्तात्रेय के गुरु है वो, है? बोले दो रखती हूं और सबको निकाल देती हूं, दो रखती हूं। दो रखकर उसने फिर चक्की चलाना शुरू किया तो दो में भी आवाज आ गई खटखट, शांति नहीं मिली। तब उसने दो में से भी एक को निकालकर अलग किया तो हाथ में बस केवल एक चूड़ी बची तो आवाज नहीं आया। दत्तात्रेय उससे ये शिक्षा लेने लगे कि संसार में तुम अकेले विचरण करो तो सुखी होगे, शांति मिलेगी। भीड़ भड़ाका यदि करो तो दो कम से कम हम रहे, बच्चों को अलग कर देते हैं, पति पत्नी दोनों रहेंगे। रहो तुम पति पत्नी, पति पत्नी में भी खटपट होता रहेगा, लेकिन तुम्हारी व्यावहारिक सत्ता तो इसी को मानता है, हम क्या करें। लेकिन हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं व्यावहारिक सत्ता की बात नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो पति को छोड़ दो, जितनी जल्दी हो पत्नी को छोड़ दो, अकेले बस। ये वेदांति तो अकेले की बात करता है, इसलिए हम कविता ही बना दिया है, खाओ केला रहो अकेला, मत देखो दुनिया का मेला, नहीं तो पड़ेगा पीछे झमेला। ये हमारी कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, खाओ केला रहो अकेला, मत देखो दुनिया का मेला, नहीं तो पड़ेगा पीछे झमेला। दो रहेंगे तो भी झमेला है। तो दत्तात्रेय ने गुरु मान लिया, इसीलिए यहां कहते हैं दो क्या है, तो बोले जीव और ईश्वर। जीव की स्वतंत्र सत्ता और ईश्वर की स्वतंत्र सत्ता यदि तुम मानते हो तो भी तुम मोक्ष सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। तो जीव की सत्ता और ईश्वर की सत्ता दोनों की सत्ता को बाध करके लक्षणावृत्ति के द्वारा जहद अजहद लक्षणा के द्वारा दोनों की चेतना को एक निश्चय करो तो फिर अकेले राम हो गए भाई। द्वयम् हित्वाश्रयेत एकम् एकम् आश्रयेत इति वेदांत डिंडिमः। और एक क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।